صلی علی رسول کریم المولا. کئی ہفتوں سے سلسل بات چل رہی ہے حضرت شاہ ولی اللہ مقدس رحمتہ اللہ کی مشہور اور مایا نام کتاب چتردار بانوا کے تھے، اور چتر اللہ میں حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے عقلی مسائل کا بیان کیا، اور ہوتا یہ ہے کہ انسانی نفسیات اللہ نے ایسی پیدا فرمائی ہے کہ کسی ایک چیز کو اگر پڑھتے رہیں سنتے رہیں تو پھر اس چیز کا غلبہ انسان پر ہو جاتا ہے، اور غلبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان پر اس چیز کا ایک حال تاری ہو جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کا حال تاری ہو جائے انسان پہ یہ چیز درست نہیں ہے، اس کی ایک مثال پہلے کی شاید کئی مرتبہ گزر چکی ہو مگر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اس جگہ یہ بات تحریر کی ہے اور لکھا ہے کہ شہر میں دمشق میں ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو لوگ تعزیت کے لیے گئے، ہم لوگ بھی تعزیت کے لیے گئے، تو ہمارے شہر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب تعزیت ان سے کی کہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا اور افسوس ہے، تو شہر کے وقت تھے مگر ہنستے رہے، ہمارے شہر خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا سر آپ کے ساتھ زیادہ کا انتقال ہوا اور آپ اس بات پہ خوش ہیں؟ انہوں نے کہا اس بات پر خوش ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں بنا کر دیا، اللہ کی خوشی اس میں ہے جو میرے بیٹے کو لے لے تو میں بھی اسی بات پہ خوش ہوں۔ ابن قیم کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو راستے میں شیخ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں مگر یہ آدمی ابھی تک کامل نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے کے انتقال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو دیے تھے، اگر انہیں افسوس ہوتا اور رو دیتے تو یہ بڑا اونچا مقام تھا بنسبت اس مقام کے کہ ہنس رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مقام۔ انسان کی اصل خصوصیت اللہ کی بندگی ہے، اور بندگی کے لیے اللہ نے انسان میں یہ جو جستجو رکھی ہے کہ انسان تلاش کرتا ہے کہ کیسا بنے، بچے کو آپ دیکھیں اپنے ٹیچر کی طرح بولنے لگتا ہے، چھوٹی بچیوں کو آپ دیکھیں تو کبھی کبھی گھر میں کہتی ہیں کہ ہمیں ایک بلیک بورڈ لا دو ہم اس پہ لکھیں گے، تو وہ کیا ہے بچی کے ذہن نے ٹیچر کی شخصیت کو قبول کر لیا، تو نتیجہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو ویسے ہی بنانا چاہتی ہے، تو بندگی کا سب سے بہتر نمونہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور لوگوں کو بتایا کہ میری بندگی اگر چاہیے اور انسان اگر چاہیے تو ہمیشہ کے لیے یہ ایک نمونہ ہے اپنے آپ کو ہم جیسا بنا، तो जो अफगान लोगों पर दाहिर होते हैं ये हाल असल नहीं है ये गलबा असल नहीं है असल चीज इंसान के लिए इंसान बनकर रहना है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे और ये दूसरी मिसाल इस बात की आपके सामने रख रहे हैं कि जो चीज आदमी पढ़ता रहता है उसका गलबा हो जाता है सिद्दीन आदमी रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी आदमी ने शिकायत की अपने हालात मामला झूठों के बयान किए तो उन्होंने उसे मशवरा दिया कि तुम मुबाह कामों में लग जाओ मुबाह कामों में लगने का मतलब यह है कि वो चीजें जिनको बज़ाहिर लोग दीन में शुमार नहीं करते लेकिन वो हराम भी नहीं होती नाजायज भी नहीं होती एक आदमी वॉक के लिए निकल जाता है एक आदमी अपने बच्चों को लेकर तकलीफ के लिए निकल जाता है एक आदमी किसी अच्छी जगह पर खाना खा लेता है दोस्त पिकनिक बनाने चले जाते हैं और उसमें कोई गैर शरणी चीज नहीं होती तो उन्होंने से मशवरा दिया कि ये काम करो वजह उसकी ये है कि जो शख्स अपनी जिंदगी से मुबाहात को खारिज कर देता है और किसी भी चीज का उस पर गलबा हो जाता है तो उसकी तबीयत में उस बात में खुशकी पैदा हो जाती है वो उस एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है कि उसके खिलाफ न देख सकता है न सुन सकता है न बोल सकता है हालांकि उस इंसान को ये चाहिए कि वो अपने आप को हदूद में रखे और अपने लिए तक्वा का जो भी मयार मुकर्रर करे जिन चीजों की छूट और रुख्सत अल्लाह ने लोगों को दी है लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए खुश जाहिर है और समझता है कि इस आदमी ने बाहर जाके खाना क्यों खा लिया बच्चों के साथ क्यों चला गया घर में एसी क्यों लगा दिया ये सब चीजें ऐसी हैं जो शरण किसी गिरफ्त में आती ही नहीं है लेकिन वो मासूम इसलिए है कि उसने अल्लाह की याद के बल्बे को अल्लाह के जिक्र को इतना अपने ऊपर तारी कर दिया कि उसने जिंदगी के बाकी रास्ते आम लोगों के लिए बंद कर और ये किसी भी मोतदिल मिजाज आदमी की तबीयत नहीं होनी चाहिए ना ही अल्लाह ने इसका हुक्म दिया और ना ही अल्लाह ने लोगों को इस बात का मुकर्रर बनाया तो इतने दिनों से जब अल्लाह की बातें चल रही हैं तो ख्याल में ये आ रहा कि इल्म जो है इससे हटके भी बात कभी होनी चाहिए और इल्म के अलावा एक चीज इंसान का दिल है और इल्म की बातें अकल की बातें कभी कभी आदमी को जिंदगी के इस पहलू से महरूम कर देती है और नतीजा उसका यह निकलता है कि आदमी को अपनी इस्लाह और अल्लाह की याद इन चीजों की फिक्र भूल जाती है सारी दुनिया का इल्म भी हासिल कर लिया जितना उस शख्स के लिए मुमकिन था और माना कि अपने जमाने का अल्लामा बन गया और लोगों ने वाह वाह कर दी और अल्लाह के यहां पहुंच कर हजरत के पास पूछ ली गई कि तुमने इस चीज में जिंदगी गुजारा ये ठीक नहीं है क्यों ऐसे किया क्या जवाब थे मौलाना सुलेमान गंज मुरादाबाद में रहमत लाए बहुत बड़े आदमी थे हज़रत शाह अलीज़ी साहब रहमत लाए के शागिर्द थे हदीस उनसे पढ़ी थी उनके खलीफा थे मां मोहम्मद अली मुंजेरी सिलसिला नक्शबंदिया की ये जो शाख थी इनमें आखिरी दौर में जो बहुत बड़े लोग गुजरे हैं ये सब लोग थे और वहां मुहम्मद बिन मुगीरी रहमतुल्लाह ने नदवत उलमा लखनऊ की बुनियाद रखी थी उनकी असमत जो भी हो एक वाकया आप सोचें उनका जवाब तो ये बताता है कि उस शख्स ने गहराई कितनी थी किसी ने उनसे कहा कि हजरत अंग्रेज पढ़ते चले जा रहे हैं और गुमराही आम होती चली जा रही है इसकी क्या वजह है तो उन्होंने कहा कि यहां कोई वक्त था अल्लाह ताला के इसमें आपकी इतजलियात दुनिया पर पड़ती थी और लोग हिदायत चाहता थे और इन दिनों अल्लाह के इसमें मुबिल की तजलियात पड़ती हैं कि वो गुमराह करने वाला है तो उन तजलियात का असर ये है कि खान पान और मदारिस जो हिदायत के मराकज हुआ करते थे मसाले वहां से गुमराही चल पड़ी तो इसलिए गुमराही आम हो गई कि उनके मारिफत इबादा मारिफत बिल्ला और तसव्वुफ में कदम रास होने की बात थी जो उन्होंने इतनी गहरी बात कही बहुत से नाम था बंगाला बाकी अहमद लाड़े के शहर थे अपने जमाने के बहुत बड़े उलिया के रास्ते से और जो चीज शस्त्र के लिए उनमें उसका इजहार सिर्फ मौके पर होता रहा और वो असल चीज की अंदाज के साथ ताकत लखनऊ आए तो मौलवी साहिबान मिलने आए तालबिल के बेचारे बच्चे तो उसने बुलाया जुम्मे की नमाज के बाद बैठे हुए थे तो उसने पूछा बच्चों क्या करते हो तो उस लड़के ने कहा कि काजी मुबारक काजी मुबारक मंत्र की बड़ी आया बच्चे की किताबों में तो उन्होंने कहा मौलवी साहब हमने माना कि तुम काजी मुबारक पढ़ के निचले काजी मुबारक हो गए इतने बड़े बच्चे लेकिन तुम कभी गौर करना काजी मुबारक की कब्र पे जाकर देखो कि क्या हो रहा है और जिसने चार दिन अल्लाह का नाम किया उसकी कब्र पे जाकर देखो कि क्या हो रहा है बड़ा फर्क पड़ जा रहा है इल्म की वजह से जो किबर पैदा होता है इसका इलाज मौत की ठोकर होती और इल्म की वजह से किबर बढ़ जाए और उसके नतीजे में अल्लाह की लानत पड़ जाए तो इसका कोई इलाज किया ये इल्म जितनी अच्छी चीज है उतनी ही बुरी भी चीज ये नजरिया कि मुझे आता है और मैं जानता हूं वो मुझे पता है और इस जोन में जो बजाही दर्जे में छोटा है उसकी बात ना सुनना और उसकी दलील को अहमियत ना देना और अपने इल्म के मुकाम पर तनकीद को बर्दाश्त ना करना ये सब अलामत इस बात की बेशक इल्म की किबर में पड़ती और इल्म के बावजूद गुमराह हो जाता है अल्लाह ने कहा अवल्लाह अल्लाह और अला इल्म उसे इल्म के बावजूद खुदा ने गुमराह के रास्ते पर छोड़ दुनिया में सबसे ज्यादा पाप का नशा सबसे बदतरीन नशा आंख का है इस आंख के नशे जैसा कोई नशा गुनाहों की बुनियाद ख्वाहिश होती है और गुनाहों की बुनियाद ये आंख का नशा होती है और गुनाह की बुनियाद जब ख्वाहिश पर हो तो उसका अंजाम और है और गुनाह की बुनियाद अपनी जात पर नजर हो तो उसका अंजाम और है। आसमान और जमीन में इतना फर्क नहीं जितना फर्क उन दो गुनाहों में है कि किस गुनाह की बुनियाद ख्वाहिश से और किस गुनाह की बुनियाद अपनी जात। आपका नशा इतना हद तक नशा है कि इससे ऐसा कोई बाफला नशा नहीं। आंख देखती है और देखना चाहती है और वो देखती है जिन चीजों को भी सबसे बदतरीन चीज जो आंख देख सकती है वो अपनी जात की बड़ाई है अपनी जात का रोज बस। सारी दुनिया देखो तो दर हकीकत इस कायनात में जितने भी गुनाह हैं तुम गौर करते रहना इस बात पे इस गुनाह ने क्यों जन्म दिया। ये कत्ल फसाद दंगा बादशाहों की लड़ाइयां मुमलिकतों पे चढ़ दौड़ना इन सारे गुनाहों की असल जाकर निकलेगी तो सिर्फ एक और वो अपनी जात की बड़ाई। ये अपनी जात की बड़ाई वो इल्म पैदा करता है अपनी जात की बड़ाई ये चीज पैदा करती है इख्तियार और आदमी की आंख देखना चाहती है कि तुम बहुत बड़े आदमी इसका अंजाम और है और ख्वाहिश की बुनियाद पर गुनाह का अंजाम और है। ख्वाहिश की बुनियाद पर गुनाह लफ्ज़ कुछ कह दो अंबिया सलाम के मुताबिक गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते ना लफ्ज़ कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को ले लीजिए जो लफ्ज़ और सज़ा उनसे हुई वो जन्नत में खाने की थी ना अल्लाह ने कह दिया थे ना खाना खा ले ये सज़ा और फिर उस खाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसको जिस्म के जो हिस्से छुपाए थे वो खुल गए। ये सारे गुनाह इनकी बुनियाद ख्वाहिश है उसका हल क्या निकला अंजाम क्या निकला अंजाम ये कि इस गुनाह के नतीजे में अपनी जात टूट गई। इंसान के साथ ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की जात का मसला नहीं था मगर वहां पर हुआ ये कि उन्होंने अल्लाह की बात के सामने सर झुका दिया रो दिए और कहा कि गलना सना वह इल्लत पर फिलना बता हम ना गलत हूं ना मेरे पास से ही अगर आपने मुआफ न किया और रहमत ना हुई तो हम लोग खसारे में चले। ये इस खता का रास्ता है कि लाई है और अंजाम से देख लो तोबा हो पर आदम अलैहिस्सलाम के सामने ही दूसरा दिया है उसने गुनाह ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं किया उसका गुनाह उसकी बुनियाद उसकी जात की उसके गाना खरीदो मिनो मैं इससे अच्छा हूं और इन जो दलाइल को जन्म देता है ना उसने भी दलील दी उसने कहा इसे आपने मट्टी से पैदा किया उसे आग से पैदा किया और आग मट्टी से बेहतर होती है लिहाजा मैं इससे बेहतर हूं। और ये जो अपनी जात का गुनाह था और अपने आप को बेहतर कहने का इसका अंजाम देख लो अल्लाह के बाद में लानत पड़े इसलिए ये जो आंख का नशा है बावला ये चाहता है कि इंसान को अरूज पर रखे दिखाए और ये उसे समझाए कि तुम जैसा कोई नहीं सहारनपुर में एक जगह हिंदुस्तान में अल्तमा महमूद हसन शेखुलंद रहमतुल्ला एक तकरीर कर रहे थे और जलसे में जब अरूज पे था और लोग अमा संगोष सुन रहे थे तो कुछ लमा आया और उसने यकदम तकरीर बंद कर दी और फरमाया फिर बात करेंगे उस तकरीर सारा मुजमा हैरान कि ये हुआ क्या जो बुलाने वाले थे उनका नजर लोग इतनी दिलचस्पी से सुन रहे थे आपने क्या किया तो फरमाया वो हजरात आ गए थे इस चीज को तो जब खानसी ने अहमदुल्ला कहते थे मैं भी मौजूद था मैंने कहा हजरत ठीक तो वक्त था बोलने का یہ تو خانی رحمت اللہ کی اس بات تھی تو اس نظرات حضرت کر کے حضرت یہی تو وقت تک ہونے کو انہیں پتہ چلتا کہ آپ پر جو کتنے اعتراضات زندگی پر کرتے رہے اور آپ کو کلی غلط فہمیاں پیدا کریں یہ پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے حضرت صاحب یہی تو وقت کا چپ ہونے کا میرے جی میں جب آیا کہ میں آج پتا چلے گا تو میں تو کو اب اللہ کی بھی بولنا نہیں رہا آپ اپنے جی کے لیے ہو گیا چھوڑو اس کے شیر انداز یہ تقویٰ اور یہ اپنی ذات کے معارف پر نظر تھی کہ کیا ہوتا ہے اسی لیے یہ اتنی مباحث یہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان میں اللہ کا ذکر نہ ہو اللہ کی یاد نہ ہو اپنے انجام کی فکر نہ ہو تو یہ سب برباد ہے سب قیامت میں خلاف یہاں جواب دینا پڑے گا کہ تمہیں اتنا علم دیا تھا اتنا کچھ دیا تھا اور خود تم نے اپنے نظر میں کبھی نہیں سوچا کہ تم ہمارے پاس آؤ تو تمہارا انجام کیا ہوگا دیکھو ساری دنیا جہنم میں چلی جائے اور انسان کی بات کرو اللہ کے تم ایک کو معاف کرتے ہیں چلو کیا نقصان اور ساری دنیا کو جنت میں بھیج دیں اور ایک اپنی ذات کو پکڑ لیں ہمیں اور کہیں کہ تم تو جاؤ جہنم میں باقی دنیا کو چھوڑو کیا فائدہ کبھی کبھی جاہل آدمی اللہ کی رحمت پر مستحق ہو جاتا ہے اور دل کا فکر لے لیتا ہے حدیث مشہور قصہ ہے کہ صحابی نے کہا اپنے لڑکوں کو بلایا اور بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور پھر اس کی راہ دریا میں دبا دینا اور میں کرتا ہوں کہ اللہ نے اسے پیدا کر دیا تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ آج زندگی گزارے تو کیا جواب لڑکوں نے ایسے ہی کیا اور لگا آدمی سے پیدا کر دیا اور اللہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ یقین نہیں تھا کہ پیدا نہیں کر سکتے اس کا تھا یقین تو تھا لیکن میں ڈرتا تھا کہ کچھ میں نے کیا ہے تو اللہ نے فرمایا اس شخص کو ہم نے موت کیا اور کریں اس حدیث پہ تو اس شخص نے کیا اللہ کی قدرت کا انکار کیا اللہ کی صفت قدرت جو اس کی ذاتی صفات میں سے ہے اس کا کیا اس نے انکار کیا اسی لیے اتنے جو کہ جب اس حدیث پہ لکھا ہے ہمیں تو انہوں نے کہا اس شخص نے کفر کیا لیکن ہمارے ساتھ کہتے تھے کہ انور شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے حدیث سے پڑھی تھی وہ براہ راست انور شاہ صاحب رحمتہ اللہ کی شادی کے فرماتے تھے انور شاہ صاحب رحمتہ اللہ ہے کہ نہیں کفر کہاں پہ ہوا اس نے تو اپنے طور پہ بھرپور میکسیمم کوشش کی کہ میں مٹ جاؤں اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا تھا کہ راز بنا دینا میری اور مجھے جلا دینا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے یہ کیا اس کی بخشش ہو گئی کفر ہوتا ہوتا تو بخشش نہیں ہوتی لیکن آپ غور کریں کہ اس شخص کی اللہ کی صفت قدرت سے پوری واقفیت نہیں کچھ نہ کچھ بات تھی اللہ نے معاف فرما دی تو یہ دل اس کے مقابلے میں اللہ کے یہاں جس چیز کی قدر زیادہ ہے وہ ٹوٹا ہوا دل ہے وہ شکستہ دل ہے انسان کا یہ احساس کہ میں گناہگار ہوں میں نالائق ہوں مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یہ چیز ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کو عروج دیتی ہے اور دل اکیلا رہ جائے اور اس کے ساتھ اللہ کی یاد اور فکر نہ رہے یہ بڑا فتنہ Maailmassa kertoo, että maailmassa niin nöpilän saare, että minä lähdin 11 tafsiir pöydänkin. Ja Muhammadin kanssa lähdin मैं दीपक चला गया वैसे ही और सुनाते थे इतना लाख फिक्र था इतना लाख फिक्र का गलबा था कि जो गली मोहल्ले में बूढ़े और लोग भी फिरते थे वो भी हर तरफ से इल्तजार इल्तजार की आवाज आती थी पर सुनाते इतना अच्छा रहा इतना फिक्र का लाख फिक्र का गलबा है था तो मुझे लगता था जैसे ये जरूर दीवार की तंग किया Ei niin, että vaan ilmi ei ole. Ilmi on, mutta ilmi kivestä juttikin puhutaan, että se on sitä ilmiä. Hazrat Ali Allahu Akbar sanoi, että 9 vuotta Deoband mollvi bantaa, ja minulla on 9 kuukautta kulunutta ihmistä. Mitä on? Siksi, että ilmi अपने वजूद का एहसास पैदा करता है और वजूद की नफी बड़ी जरूरी फर्ज है अपने वजूद की नफी करना अपना इल्म अपना ओहदा अपनी कुदरत अपनी ताकत अपनी सल्तनत और उरूज इन सब चीजों को बना ले एक बीवी मिलती है जिससे वक्त चल सकता है तो अपना इम्तिहान ले और सोचे कि मेरा इसके साथ क्या रहेगा माता पिता ने अभी एक औरत आई है क्या रहेगा उसको स्वागत ना गाली देना मारना ये सब बात की अलामत है कि आदमी अपने आप को कुछ समझता है ना समझता होता सता देना करता और फिर बच्चे हो जाएं तो फिर तो चार पांच रियाया में शामिल हो गए फिर तो बादशाह सलामत हो गए भी इसीलिए फर्ज नमाज है इसके मुताबिक शामी में लिखा है कि बच्चे को पहले नमाज का और लतीफ ने जो आया है मारे तो उन्होंने कहा कि दलियत हाथ से नहीं मारना जल पशपा लकड़ी से नहीं मारना हाथ से मारे और कहते हैं हाथ से भी तीन चपत बता दे बस इससे ज्यादा चपत का मतलब ये हुआ कि ये गुत्ती गर्दन बस उस पे ऐसे मार दिया चलो दिमाग पर क्यों शरीयत ने बच्चे को मारने की इजाजत दी हम हैरान होते हैं कभी कभी ये सोच के कि बच्चे को मारते हैं और बच्चा अगर अपनी मां को माफ कर भी दे कि बाप को माफ किया तो बाप से माफी मांगे माफी मांगे तो अपनी इज्जत खत्म होती है रोग खत्म होता है दबदबा खत्म होता है वकार खत्म होता है चलो मां से माफी मांगी बच्चे ने माफ कर दिया उसको माफ करने का हक नहीं ये जुल्म ने जो कुछ किया ये बाप की राह अल्लाह के यहां क्या जवाब दे इतने मोहताज हैं फुकहा तरबियत में कि जब शेख होना और मशायख में शुमार होना किसी शख्स का बगैर इल्म के आ जाए ये भी बड़ी मुसीबत हो जाती है इतने मोहताज हैं फुकहा कि उन्होंने कहा जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे हुक्म नहीं देना चाहिए जब वो बालिग हो जाए तो अब बच्चे को मसलन को 15 साल की उम्र में जवान हो गया 16 साल की उम्र में जवान हो गया अब उसे कहना कि तुम पानी पिलाओ और वो कह नहीं पिलाता ये गुनाहगार बच्चा इसलिए किसने हुक्म मांगने के इंतजार किया ना माँ बाप की ताक पर कहा कहते हैं ये तरबियत है कि बच्चे से सवाल के जरिए बात कर ली जाए कि बेटे क्या आप पानी पिला सकेंगे गर्मी लग रही है बेटे आप पंखा चला सकते हैं दूसरी तरह से बात कर ली जाए मार्केट जाना है पर कर लें और अंदेशा के बच्चे को कहा जाएगा कि मार्केट चलो तो नहीं जाएगा उससे बात कर लीजिए कि इतने सुबह मार्केट जाना है कि ये चीजें खरीदनी है क्या आप कर सकते हैं साथ क्या मुनासिब होगा वो कहता है नहीं तो उसे दलील से समझाया जा सकता है वो कहा इतनी एहतियात करते हैं तरबियत के बाद में इसलिए इस लिए को कहते हैं उसे गुनाह से बचाओ ऐसे ना हो कि अल्लाह के यहाँ उसकी नादानी में अनजाने में उसके गुनाह होते रहे और खुदा के यहाँ उसके गुनाहों का अंबार हो जाए की तरबियत है बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल और अफसोस ये है कि मुसलमानों में पिछली कम से कम 10 नस्लों से कोई तरबियत नहीं अमूक तौर पर तरबियत चीज खत्म हो गई सियासत के तकरीबन सुन लो और मसाइल से सुन लो मगर जो तरबियत का बाप है ये निकल गया नतीजा ये निकलता है कि आदमी ऐसी हरकत है सोचता रह जाएगा क्या कि मुसलमानों की हरकत है किसकी हरकत है इसलिए वो कहते हैं कि ये जरूरी है कि अपनी सांस की नफी की जाए अपने आप को खत्म किया जाए हिटाया जाए बाजार से गुजर रहे थे और उनके सर पे खजूरों की जो गुठलियां होती हैं इसकी एक पोटली रखी दी थी लोगों ने बड़े हैरानी से देखा और कहा कि मोमिनी इतने आपके गुलाम हैं ये क्या करते हैं तो उन्होंने कहा वापसी पे घर पहुंचकर कर सही कहते हो आज से जहन में आया कि मैं मुसलमानों का अमीर बन गया मैंने अपने जी से कहा कि तुम आम इंसानी की तरह हो और देखो तुम बाजार से मेरी गुठलियां लेके चलो तो कोई तुम्हारी गुठलियां लेने वाला नहीं है तुम आम इंसानी تو فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ جیسے آدمی کے متعلق کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس انسان کو اپنی بڑائی کا گمان پیدا ہو لیکن محتاط ہونے کی بات تھی احتیاط کی بات تھی کہ وہ جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو دنیا میں یعنی ان کے قرب و جوار میں جتنے لوگ تھے ان کی نگاہیں ٹکی گئی تھیں کہ امیر المومنین اب چابی دیں گے اور یہ ہوگا ہوگا یہودی عیسائی مسلمان سب جمع اور ایک عیسائی عورت نے کرتا پیش کیا پہننے کے لیے تو انہوں نے کرتا پہن لیا اور ایک گھوڑا لایا گیا اس کی بیٹھ کے خاموشی سے تھوڑا سا دور گئے اور لوگ ان کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے اور پیدل چل رہے تھے اور پھر کہنے کے لاؤ میرا کرتا وہ پرانے والا تھا تو اس عورت نے کہا کہ آپ کو پسند نہیں آیا فرمایا نہیں ٹھیک ہے مگر وہ پسینہ زیادہ جذب کرتا ہے اور پھر کہا کہ منہ کی دے دو یہ گھوڑا رکھ دو تو لوگوں نے کہا اس گھوڑے میں کیا ہے تو چپ رہے اور بعد میں فرمانے لگے میں نے جب وہ کرتا پہنا اور جب گھوڑے پہ بیٹھا تو مجھے خیال ہوا کہ کہیں میرے نفس میں کبر پیدا نہ ہو جائے میں اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے اچھا نہ سمجھنے لگوں اس لیے میں نے یہ کام اتنی ضروری ہے یہ چیز جب ملتا ہے اپنی رائے کو مٹاتا ہے اور تو پھر اس انسان کا وجود اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسلم المسلمون من لسانی کی وجہ دے مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان کو مسلمان محفوظ رہے اور وہ ہوتا ہے اللہ کی یاد کی کثرت سے آپ کبھی غور کیجیے گا ہم نماز پڑھتے ہیں ہم سب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر ایک نماز میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں رکوع سجدہ اٹھنا بیٹھنا ہر جگہ کہتا ہے اللہ اکبر اس کا کیا ترجمہ ہوا اللہ سب سے بڑا یہ کافی نہیں ہے ہر اللہ اکبر پہ یہ سوچے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا ورنہ اللہ اکبر ایسے ہی گزر جاتا ہے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس کی نماز کی بالکل نماز ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी. लेकिन अगर ये ख्याल रहे ना कि मैं कहता हूं अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, इस तौर पे उसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सबसे छोटा आदमी दुनिया का, तो फिर इलाज होता रहता है. फिर जब इख्तियार होते हैं तो इख्तियार से डरता है कि कहीं ऐसे ना हो ज्यादती हो जाए, कहीं ऐसे ना हो ऐसी चीज हो जाए, ऐसी चीज हो जाए. ये है बुआ. जितनी भी चीजें इंसान की तबीयत में ये जज्बा पैदा करें कि लोग देखें और मेरी आंख का नशा खुला हो, उनसे बचना चाहिए. उनमें ये इल्म है, ये अकली चलाई जाएंगे, सब सही है, जज्बा भी आती रहेगी, इंशाल्लाह चलती रहेगी. लेकिन इन चीजों के साथ साथ अपनी हालत पर भी सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ पेशी हुई तो मैं अपने आमाल का क्या करूँगा. मैं आपको अगर